चौहान पैलेस में शांति छाई हुई थी। आराध्या, अक्षत और वंश ऑफिस के लिए निकल चुके थे, जबकि वहां काम करने वाले हाउस हेल्पर भी अपना काम खत्म करके आराम करने में लगे हुए थे। इस बीच वेद और शिवांशा अपने कमरे में थे। शिवांशा वेद के सीने से लगी हुई थी। इस बीच उसके पास एक कॉल आया। वो अरमान का कॉल था, जो उसने वेद से नव्यांशी के बारे में बात करने के लिए किया था। जैसे ही कॉल आया, शिवांशा ने वेद से अलग होना चाहा, लेकिन वेद ने उसे फिर से अपने करीब कर दिया था। वेद का एक हाथ शिवांशा को अपनी बाहों में घेरे हुए था, तो दूसरे हाथ से उसने कॉल रिसीव किया। वेद को यही लगा कि अरमान ने रोहन के बारे में बात करने के लिए उसे कॉल किया है। जैसे ही वेद ने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से अरमान ने शांत आवाज में कहा, मिस्टर चौहान, नव्यांशी को यहाँ आए हुए लगभग 1.5 महीना बीत चुका है और मुझे लगता है कि उसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी होगी। आपको उसे वापस उदयपुर बुला लेना चाहिए। अरमान की बात सुनकर वेद की भौहें सिकुड़ गई थीं। उसने तुरंत कॉल स्पीकर पर किया और आगे कहा, क्या नव्यांशी तुम्हारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर रही है? उसकी रिसर्च और बाकी चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई हैं, उसे वहाँ टाइम लगेगा। अगर फिर भी उसके तुम्हारे यहाँ रहने से किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो मैं नव्यांशी को शिफ्ट करने के लिए बोल दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अरमान जल्दी से बोला, बस मुझे डर है कि उसके यहाँ रहने से आपके और शिवांशा के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन नवी दीदी के वहाँ रहने से हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है अरमान भाई? पूरी बात सुनकर शिवांशा हैरत भरे लहजे में बोली। अरमान ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें इस बारे में खुलकर कैसे बताए, जबकि वेद की अनुभवी निगाहों ने पहले ही सब कुछ पहचान लिया था। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, किस बात का डर है तुम्हें? उसके सवाल पर अरमान हड़बड़ा गया था। वो बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मिस्टर चौहान, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो फिर अचानक इस कॉल का क्या मतलब हुआ? अरमान, मैं बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम कोई भी बहाना बनाकर ये कह दोगे कि नव्यांशी के तुम्हारे घर में रहने की वजह से हमारा रिश्ता खतरे में आ जाएगा। क्या नव्यांशी ने तुम्हें कुछ कहा? वेद ने सीधे सीधे पूछा। उसका इशारा किस तरफ था ये अरमान को तो समझ आ गया था, लेकिन शिवांशा अभी भी उलझन भरी निगाहों से वेद की तरफ देख रही थी। अरमान चुप हो गया था, तो वेद वापस बोला, तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हारी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अरमान? शिवांशा कौन है ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है। उसके बावजूद मैंने इस डर से कभी अपने कदम पीछे नहीं लिए कि बाकी लोग क्या कहेंगे। हालांकि वेद अरमान का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें झुक गई थीं। वहीं वेद की बातों से शिवांशा को भी अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। प्लीज़, आप मेरे लिए खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल मत कीजिए, शिवांशा ने धीमी आवाज़ में कहा। तुम राजावत फैमिली से अलग रहते हो, ऊपर से नव्यांशी शिवांशा जितनी सीधी साधी भी नहीं है जो उसे कोई भी आसानी से कंट्रोल कर सके। मैंने कभी नव्यांशी की शादी के बारे में नहीं सोचा हो, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो प्लीज़ ये सोचकर अपने इमोशंस का गला मत दबाओ कि अगर तुम दोनों का रिश्ता हुआ तो मेरे और शिवांशा का रिश्ता टूट जाएगा। ये मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, वेद ने गहरी आवाज़ में कहा। वेद की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया था और अरमान के दिल में भी नव्यांशी के लिए जज्बात थे, अभी से नहीं, न जाने कब से। अरमान कुछ पल रुका और फिर शांत स्वर में कहा, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसे आप जैसी लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊंगा। ऊपर से आप जानते हैं कि बड़ी माँ और बाकी सब फैमिली आपके घर में घुसने का एक मौका ढूंढ रही है। अगर मेरा और नव्यांशी का रिश्ता आगे बढ़ा तो उन्हें एक मौका मिल जाएगा आपके घर में घुसने का और शिवांशा को परेशान करने का। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? वेद ने भौहें चढ़ाकर कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, अरमान ने तुरंत जवाब दिया। अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो थोड़ा भरोसा खुद पर भी दिखाओ और बिना किसी डर के आगे बढ़ो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो या तुम्हारे दिल में नव्यांशी के लिए कुछ नहीं है, तो इट्स ओके, मैं उसे कॉल कर दूंगा वो शिफ्ट कर लेगी, या मैं उसे यहाँ बुला लूंगा, वेद बोला। उसने अरमान के सामने दोनों ऑप्शन रख दिए थे। अब फैसला अरमान को करना था। वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गया था। अगर अरमान नव्यांशी का हाथ थामता है तो उसे वेद का पूरा सपोर्ट था और इस बात से डरने की भी जरूरत नहीं थी कि राजावत फैमिली शिवांशा को नुकसान पहुंचा पाएगी। पर साथ ही वो पुरानी घटनाओं को भी भूल नहीं सकता था। लीला बार बार चौहान पैलेस में घुसने की कोशिश करती, उसने शिवांशा के देवराज की पोती होने का सच सामने लाने का एक मौका नहीं छोड़ा था। अरमान बिल्कुल चुप था और उसने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वेद के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे और वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, जबकि शिवांशा का दिल डर के नारे जोरों से धड़क रहा था। उसे मन ही मन बुरा लग रहा था। अरमान ने हमेशा उसका साथ देने की कोशिश की थी, उसके बुरे वक्त में उसे आश्रय दिया था, आज उसकी वजह से वो अपनी भावनाओं का गला घोट रहा था। वेद ने शिवांशा की तरफ देखा, जिसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वो अगले ही पल रो देगी। वो हल्का कांप रही थी। वहीं अरमान भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो आखिर में वेद को बोलना पड़ा। ठीक है, मैं नव्यांशी से बात कर लूंगा और उसे यहाँ आने का बोल दूंगा, और डोंट वरी, मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे कॉल किया था। जब वेद ने नव्यांशी को वापस बुलाने का कहा, तो उसे एक ही पल में अरमान का दिल इतना जोरों से धड़क उठा मानो फटकर बाहर आ जाएगा। उसी एक पल में उसे एहसास हुआ कि सच में वो नव्यांशी को किस हद तक चाहने लगा था। इससे पहले कि वेद कॉल कट करता, अरमान जल्दी से बोला, नहीं मिस्टर चौहान, प्लीज अभी कुछ मत कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हारा फैसला किसी तरह के दबाव में आकर नहीं लिया हुआ होगा। वेद ने उसे इतना ही समझाया और फिर कॉल कट कर दिया था। कॉल काटते हुए वेद ने शिवांशा की तरफ देखा, जो जल्दी से उससे दूर हो गई थी। उसके चेहरे के भाव ये बताने के लिए काफी थे कि उसे अंदर ही अंदर कितना बुरा लग रहा था। कुछ चीजों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, वेद ने शिवांशा की गाल को सहलाकर कहा। उसका प्यार भरा स्पर्श पाते ही शिवांशा की आंखों में कैद आंसू बाहर आने को निकले थे। शिवांशा ने नजर उठाकर वेद की आंखों में देखा। क्या वे मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं अगर मैं आपसे दूर, शिवांशा बोल रही थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेद उसे बीच में काटते हुए सख्त आवाज में बोला, इस बारे में सोचना भी मत। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। पर मेरी वजह से उनका रिश्ता, शिवांशा बोलते हुए रुक गई थी। वो जानती थी कि वेद के सामने उसे उसकी लाइन पूरी करने की भी जरूरत नहीं होती थी। वो खुद ब खुद समझ गया था, उनका रिश्ता अभी बना भी नहीं है और तुम्हें उसके टूटने का डर सता रहा है। और हमारा क्या, हम पिछले 5 महीने से एक साथ हैं। उसे तकलीफ देने से डर रही हो, और सोचो कि तुम मुझसे दूर हुई तो मुझे कितनी तकलीफ होती, वेद ने जवाब दिया। पर, शिवांशा बोली,
पर अगर मगर के रिश्तों में कोई जगह नहीं है। मैंने उसे कह दिया ना कि अगर वो नव्यांशी के साथ किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे सपोर्ट करूंगा। मैं खुद देख लूंगा कि मुझे राजावत फैमिली को तुमसे और मेरी फैमिली से कैसे दूर रखना है। पर अगर उसमें ही कोई स्टेप लेने की हिम्मत नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ना ही तुम। उसके लिए बुरा फील करना बंद करो और जाकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी लेकर चल रहा हूँ, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। मुझे किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, वेद सख्त आवाज़ में बोला। उसने शिवांशा के मुंह से ये शब्द तक नहीं निकलने दिया कि नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के चलते वो वेद और अपने रिश्ते की कुर्बानी दे सकती है। एक पल के लिए शिवांशा जरूर ऐसा सोच सकती थी, लेकिन वेद कभी नहीं। हाँ, अगर ये शिवांशा की खुशी से जुड़ा होता तो बात अलग थी। फिर वेद इस बारे में सोच सकता था कि शिवांशा उससे दूर जाकर खुश रहती है तो वो उसे छोड़ सकता था, पर किसी मजबूरी के चलते बिल्कुल नहीं। दूसरा, वेद से ज्यादा सुरक्षित शिवांशा किसी दूसरी जगह नहीं हो सकती थी। वेद की सख्ती और उसकी डांट के आगे शिवांशा की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो चेंज करने के लिए चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अरमान वेद से बात करके दूसरी तरफ पलटा तो उसके सामने नव्यांशी हाथ बांध कर खड़ी थी। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसने उनकी कुछ बातें सुन ली थी। नव्यांशी आंखों में गुस्सा लिए अरमान की तरफ घूर कर देख रही थी। मैं वो बस मिस्टर चौहान, मैं, अरमान हड़बड़ाते हुए अपनी सफाई पेश कर रहा था तभी नव्यांशी दांत पीसते हुए बोली, मतलब तुमने भाई को कॉल कर भी दिया? क्या इतना डर लगता है तुम्हें मुझसे? छोड़ो, मुझे तुम्हारे घर पर रहना ही नहीं है, और एक बार बता देते कि तुम सच में भाई को कॉल करने वाले हो, मैं खुद बखुद यहाँ से चली जाती। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि उनसे बात करते हुए मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील होगी? नव्यांशी को अरमान की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो जाने के लिए दूसरी तरफ पलटी तभी अरमान जल्दी से उसके सामने आ गया था। आई एम सॉरी, मैं बस डर गया था, अरमान ने धीमी आवाज़ में कहा। मुझसे डर गए थे? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ, या फिर तुम मेरे क्लोज होने से इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हो कि मुझे निकालने के लिए मेरे भाई को कॉल कर दिया? नव्यांशी उसे घूरते हुए बोली। मुझे तुमसे नहीं, हमारे फ्यूचर से डर लगता है। हमारा साथ रहना कहीं से भी सही नहीं है। तुम मेरी फैमिली को जानती हो, वे बस शिवांशा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और अगर हमारे बीच कुछ हुआ तो उन्हें चौहान पैलेस में घुसने का मौका मिल जाएगा। वे चौहान फैमिली के क्लोज हो जाएंगे और इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मुझे बस मिस्टर चौहान और शिवांशा के रिश्ते में किसी दूरी के आने का डर है, अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा। उसके दिल में जो डर था और जो उसने वेद को बताया था, वो वैसे का वैसा उसने नव्यांशी के सामने रख दिया। हम कोई बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारी फैमिली की बातों में आ जाएं। अब तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली, और किसने कहा कि अगर हम दोनों ने शादी की तो मैं उनके साथ रहने वाली हूँ? नव्यांशी ने सीधे सीधे जवाब दिया। मैं कंफ्यूज हूँ, अरमान इतना ही बोला। नव्यांशी कुछ पल के लिए चुप हो गई थी और अरमान के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे और वो नव्यांशी से नज़र तक नहीं मिला रहा था। नव्यांशी ने गहरी सांस ली और अरमान के हाथ को कसकर पकड़ा। उसकी इस हरकत पर अरमान ने जल्दी से नव्यांशी की तरफ देखा। नव्यांशी ने अपने हाथ को अरमान के सीने पर रखा और उसकी धड़कन को महसूस कर रही थी, जो उसके हाथ पकड़ने भर से तेजी से धड़क रहा था। देखो, तुम्हारा दिल तो किसी तरह की कन्फ्यूजन में नहीं है। रही बात फ्यूचर की, तो तुम सब कुछ मेरे ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें तो अपनी फैमिली को ठीक से टैकल तक नहीं करना आता। उन्हें बाहर निकालने के लिए बहाने कौन बनाता है? सीधा धक्के मार के क्यों नहीं निकाला? नव्यांशी बिल्कुल सपाट लहजे में बोले जा रही थी। कई बार तो मुझे बड़ी माँ से ज्यादा खतरनाक तुम लगती हो, ऐसे कौन करता है? अरमान आंखें बड़ी करके बोला। उन जैसे रिश्तेदारों के साथ ऐसे ही किया जाता है, नव्यांशी ने सिर हिलाकर कहा। उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल कहा, तुमने भाई को सब बता दिया है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये पता चल गया होगा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या उन्होंने इस बात पर गुस्सा किया या फिर उन्होंने ये कहा कि वो मुझे बुलाने के लिए कॉल करने वाले हैं? अरमान ने देखा कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाली नव्यांशी के चेहरे पर भी नर्वसनेस दिखाई दे रही थी। शायद ये वेद की वजह से था। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरमान ने उसे शांत करने के लिए कहा। तभी नव्यांशी ने उसके सीने पर जोर से मारा। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इडियट? नव्यांशी गुस्से में चिल्ला पड़ी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अरमान ने लाचारी से कहा। अरमान का शांत और सीधा स्वभाव देखकर नव्यांशी ने अपना सिर पकड़ लिया था। उससे बहस करना बेकार था और वो गुस्से में अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगी थी। वहीं अरमान अभी भी उलझन में वहां खड़ा हुआ था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था कि वो इस बारे में कोई फैसला कर सके। अरमान अपनी उधेड़ बुन में खोया हुआ सोच रहा था कि तभी उनके घर की डोरबेल बजी। नव्यांशी बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने चली गई थी। उसने देखा सामने देवेश और लीला खड़े हुए थे। किसने सोचा था कि अरमान को जिस चीज का डर लग रहा था वो इतनी जल्दी उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं। और प्लीज सब समीक्षा करके जाया करो, मुझे बार बार कहना बहुत अजीब लगता है।